एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
आज हम एक ऐसे जबरदस्त विचारक के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम इस्लामी दुनिया में बहुत इज्जत से लिया जाता है, अल गजाली।
जी हाँ, अल गजाली। पूरा नाम अबू हामिद मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल गजाली।
11वीं सदी के फारस, मतलब आज के ईरान में जन्मे थे।
हाँ,
और उन्हें इस्लाम का प्रमाण तक कहा गया।
बिल्कुल, हुज्जत अल इस्लाम, ये टाइटल ही अपने आप में बताता है कि उनका मर्तबा क्या था।
सोचिए कितना गहरा असर रहा होगा।
यकीनन, और उनका दौर भी बड़ा दिलचस्प था। 11वीं-12वीं सदी इस्लामिक स्वर्ण युग तो था, पर साथ ही साथ विचारों की जबरदस्त उथल पुथल भी थी।
उथल पुथल किस तरह की?
देखिए, सेल्जोक साम्राज्य का जोर था, अब्बासी खिलाफत बस नाम की रह गई थी, और बौद्धिक मैदान में कह सकते हैं एक जंग छिड़ी हुई थी।
जंग किन विचारों के बीच?
हाँ, मतलब एक तरफ थे फलसफा के पैरोकार, वो लोग जो यूनानी दर्शन से प्रभावित थे, जैसे इब्न सीना, जिन्हें पश्चिम में एविसेना के नाम से जानते हैं।
अच्छा, तर्क को मानने वाले।
हाँ, तर्क को सबसे ऊपर रखने वाले। फिर दूसरी तरफ था कलाम, यानी इस्लामी धर्मशास्त्र, जो मजहब का बचाव तर्क से करता था।
और सूफीवाद, वो भी था।
जी, सूफीवाद यानी रहस्यवाद, वो भी उभर रहा था। हालांकि कई जो पारंपरिक धर्मशास्त्री थे वो उसे शक की निगाह से देखते थे।
तो मतलब तर्क, आस्था और रूहानी अनुभव, इन सब के बीच एक तनापोड़, एक कश्मकश चल रही थी।
बिल्कुल सही, और इसी माहौल में अल गजाली का काम सामने आता है। उनकी पूरी जिंदगी एक तरह से इसी कश्मकश की कहानी है।
किस चीज की कश्मकश?
एक गहरी बेचैन करने वाली तलाश थी उनकी, वो जिसे कहते थे यकीन, मतलब ऐसी निश्चितता, ऐसा ज्ञान जिस पर कोई शक की गुंजाइश न हो।
यकीन की तलाश।
हाँ, और यही तलाश उनके जीवन का, उनके काम का केंद्र बिंदु बनी।
दिलचस्प। तो ये तलाश शुरू कहाँ से हुई? उनका बचपन कैसा था? सुना है तूस शहर में एक साधारण परिवार में जन्मे थे।
जी, परिवार साधारण ही था। पिता का देहांत जल्दी हो गया था, पर कहते हैं कि बचपन से ही जहीन थे, मतलब कमाल की प्रतिभा थी।
अच्छा।
पारंपरिक इस्लामी तालीम ली, फिर निशापुर गए, जो उस जमाने में तालीम का एक बड़ा केंद्र था।
निशापुर में क्या हुआ?
वहां उनकी मुलाकात हुई अपने उस्ताद इमाम अल हरमैन अल जुवेनी से। वो उस दौर के सबसे बड़े, सबसे सम्मानित धर्मशास्त्री थे। अल गजाली ने उनसे बहुत कुछ सीखा।
और फिर उनकी अपनी पहचान बनी।
हाँ, अल जुवेनी के इंतकाल के बाद तो उनकी शोहरत बहुत फैल गई। सेल्जुक वजीर थे निजाम अल मुल्क, उनकी नजर पड़ी इन पर।
निजामुल मुल्क, ये तो बड़ा नाम है इतिहास में।
जी हाँ, और उन्होंने सिर्फ 33 साल की उम्र में गजाली को बगदाद के मशहूर निजामिया मदरसे का सदर मुदरिस, मतलब प्रिंसिपल या हेड प्रोफेसर बना दिया।
33 साल की उम्र में, ये तो उस वक्त की सबसे बड़ी एकेडमिक पोस्ट रही होगी।
बिल्कुल,
इस्लामी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित जगह।
वो रातों रात एक सुपरस्टार स्कॉलर बन गए थे, कह सकते।
सुपरस्टार स्कॉलर, कमाल है। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। कहानी में एक बड़ा मोड़ आया है ना?
हाँ, सबसे बड़ा मोड़, शायद उनकी जिंदगी का निर्णायक मोड़, लगभग 1995 की बात है। वो अपने करियर के शिखर पर थे, और तभी उन्हें एक भयानक बौद्धिक और रूहानी संकट ने आ घेरा।
संकट किस तरह का?
उन्हें शक होने लगा, गहरा शक, कि जो कुछ मैं जानता हूँ, जो मैंने तर्क से सीखा है या अपनी इंद्रियों से महसूस किया है, क्या वो सच है? क्या किसी भी चीज का पुख्ता यकीन हो सकता है?
ओ, ये तो किसी भी सोचने वाले इंसान के लिए, खासकर एक इतने बड़े आलिम के लिए बहुत बहुत परेशान करने वाला सवाल है।
बहुत ज्यादा, और इसका असर सिर्फ दिमाग तक नहीं रहा।
मतलब
उसका असर जिस्मानी हो गया। उनकी जबान बंद हो गई, वो पढ़ा नहीं सकते थे, ठीक से खा पी नहीं पाते थे, महीनों तक यही हालत रही।
क्या बात है, वो इंसान जो हजारों को पढ़ाता था, वो खुद सवालों के ऐसे भंवर में फंस गया कि बोलती बंद हो गई।
जी, वो अपनी बाहरी कामयाबी और अंदरूनी बेचैनी के बीच का जो फासला था, उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे।
तो इस संकट से वो निकले कैसे?
यही संकट उनके लिए एक नए दरवाजे की तरह साबित हुआ, एक महान परिवर्तन का कारण बना।
परिवर्तन? कैसा परिवर्तन?
उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना शानदार करियर, शोहरत, इज्जत, पैसा, यहाँ तक कि परिवार को भी अलविदा कहा।
सब छोड़ दिया?
हाँ, और निकल पड़े एक लंबी 11 साल की यात्रा पर, एक भटकते हुए सूफी दरवेश की तरह।
ग्यारह साल कहाँ कहाँ गए, क्या ढूंढ रहे थे वो?
वो दमिश्क गए, यरूशलम गए, मक्का गए, इन जगहों पर रहे, सूफी साधना में पूरी तरह डूब गए, अपनी पहचान छुपाकर, एक आम मुसाफिर, एक आम साधक की तरह जिए।
पहचान छुपाकर?
हाँ, वो उसी यकीन की तलाश में थे जो उन्हें मदरसों की बहसों और किताबों में नहीं मिला था। वो ज्ञान के उस चश्मे को खोजना चाहते थे जो सीधे दिल से फूटता है।
ये तो कमाल की हिम्मत और ईमानदारी की बात है, अपनी पूरी बनी बनाई दुनिया को छोड़कर सच की तलाश में इस तरह निकल पड़ना।
बिल्कुल, और शायद इसी यात्रा ने, इसी अनुभव ने उनके विचारों को वो गहराई दी जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है।
तो 11 साल बाद क्या हुआ?
वो वापस अपने वतन तूस लौटे, वहाँ एक छोटा सा मदरसा और एक खानका मतलब सूफी लॉज खोला और अपनी बाकी जिंदगी लिखने, पढ़ाने और जो लोग रूहानियत की राह पर चलना चाहते थे उनका मार्गदर्शन करने में गुजार दी।
अच्छा, अब उनका जोर किस बात पर था?
अब उनका जोर किताबी इल्म को रूहानी तजुर्बे के साथ जोड़ने पर था, थ्योरी और प्रैक्टिस को एक साथ लाने पर।
चलिए अब उनके कुछ मशहूर कामों पर बात करते हैं। एक किताब का नाम बहुत आता है जिसने काफी हलचल मचाई थी, तहाफुत अल फलासफा। इसका मतलब क्या हुआ?
हाँ, तहाफुत अल फलासफा मतलब दार्शनिकों की आपसी कलह या असंगति। ये किताब एक तरह का बौद्धिक धमाका थी उस वक्त।
धमाका क्यों?
क्योंकि इसमें गजाली ने फलसफा, खासकर इब्न सीना जैसे दार्शनिकों के उन दावों पर सीधा हमला किया जो पूरी तरह अक्ल यानी तर्क पर आधारित थे।
जैसे
ये मानना कि दुनिया हमेशा से है, अनादि है, या ये कि ईश्वर को हर छोटी छोटी खास चीज का इल्म नहीं है, या ये कि मरने के बाद जिस्म दोबारा जिंदा नहीं होगा।
अच्छा, तो गजाली ने क्या कहा?
गजाली ने कहा, देखिए, तर्क अपनी जगह जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ तर्क के भरोसे आप खुदा की जात, दुनिया की शुरुआत या आखरत जैसे गहरे भेदों को पूरी तरह नहीं समझ सकते। तर्क की अपनी सीमाएं हैं।
तो क्या वो तर्क के खिलाफ थे?
नहीं, खिलाफ नहीं थे, वो तर्क की अहमियत समझते थे। बल्कि उन्होंने तो इस किताब से पहले एक और किताब लिखी थी, मकासिद अल फलासफा यानी दार्शनिकों के उद्देश्य।
हाँ, इसका भी जिक्र आता है।
उसमें उन्होंने पहले इब्न सीना के दर्शन को बड़ी ईमानदारी और बारीकी से समझाया, जैसे वो कह रहे हो, देखो मैं तुम्हारी बात तुमसे बेहतर समझता हूँ। और फिर तहाफुत में उन्होंने बताया कि इसमें कहाँ कहाँ झोल है, कहाँ कमी है।
वाह, पहले महारत दिखाई फिर आलोचना की, कमाल का तरीका।
जी, वो बस ये दिखा रहे थे कि फलसफी लोग सिर्फ तर्क के बल पर उन दायरों में घुसने की कोशिश करें जो तर्क से परे हैं। इस किताब ने इस्लामी दुनिया में यूनानी दर्शन के असर को काफी हद तक कम कर दिया।
और उनकी जो सबसे बड़ी किताब मानी जाती है, इह्या उलूमुद्दीन, धार्मिक विज्ञानों का पुनरुद्धार, इसके बारे में बताइए।
हाँ, इह्या ये तो उनकी शाहकार रचना है, उनका मैग्नम ओपस। आप इसे एक मुकम्मल गाइड कह सकते हैं।
गाइड किस चीज की?
एक मुसलमान अपनी जिंदगी को इल्म, ज्ञान, अमल, कर्म और रूहानियत अध्यात्मता से कैसे सवार सकता है, कैसे एक बेहतर इंसान बन सकता है, इसकी गाइड।
अच्छा,
किताब।
और कहते हैं इसी किताब ने सूफीवाद को मुख्यधारा में लाने में बहुत मदद की।
हाँ, ये उनका एक बहुत बहुत बड़ा योगदान था। सूफीवाद जो पहले कुछ हद तक हाशिए पर समझा जाता था या जिस पर शक किया जाता था, गजाली ने उसे इस्लामी रूढ़ीवादी सोच के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा किया। उन्होंने दिखाया कि शरीयत, कानून अगर जिस्म है तो तरीकत, सूफी रास्ता उसकी रूह है, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं।
और आम लोगों के लिए भी आसान बनाया।
जी, उन्होंने सूफी रास्ते को, उसकी रूहानी गहराइयों को आम मुसलमान के लिए भी सुलभ बनाया, उसे सिर्फ कुछ खास लोगों या दरवेशों तक महदूद नहीं रहने दिया।
एक और किताब का जिक्र बार बार आता है, अल मुनकिद मिनद दलाल, गुमराही से बचाने वाला। ये तो उनकी अपनी कहानी है शायद।
बिल्कुल, ये उनकी बौद्धिक आत्मकथा है और बहुत दिलचस्प है पढ़ने में।
इसमें क्या बताते हैं वो?
इसमें वो अपनी पूरी यात्रा बयान करते हैं, कैसे वो यकीन की बुलंदियों से शक की अंधेरी गहराइयों में गिरे
जी,
और फिर कैसे आखिरकार उन्हें वो सच्चा यकीन मिला, किताबों से नहीं, बहस से नहीं, बल्कि सीधे रूहानी अनुभव से, जिसे वो ज़ौक कहते, मतलब चखना, या एक ऐसा नूर, एक ऐसी रोशनी जो अल्लाह दिल में डालता है।
ज़ौक, चखना, सीधा अनुभव।
हाँ, और इस किताब में वो ज्ञान के अलग अलग रास्तों, कलाम, फलसफा, बातिनी इस्माइली शिक्षाएं और सूफीवाद का जायजा लेते हैं और बताते हैं कि उन्हें कहाँ क्या मिला और क्या नहीं मिला।
तो अगर हम उनके मुख्य विचारों को समेटना चाहें एक तो ये शक को एक तरीके की तरह इस्तेमाल करना।
हाँ, उनका मेथडिकल डाउट या व्यवस्थित संदेह, ये कमाल की चीज है। डेकार्ट से सदियों पहले उन्होंने शक को एक औजार बनाया।
औजार किस लिए?
हर सुनी सुनाई बात, हर मान ली गई धारणा पर सवाल उठाने के लिए, ताकि वो उस ठोस बुनियाद तक पहुंच सके जिस पर शक न किया जा सके। और उनका निष्कर्ष क्या था?
क्या था?
कि सच्चा अटूट यकीन सिर्फ दिमागी कसरत या इंद्रियों के भरोसे नहीं मिलता, वो मिलता है रूहानी कश्फ से, सीधे अनुभव से, ज़ौक से।
ये तो बहुत गहरी बात है। और उन्होंने कारणता यानी कॉजालिटी पर भी सवाल उठाया था, ओकेजनलिज्म जिसे कहते हैं, ये क्या था मामला?
हाँ, ये थोड़ा पेचीदा लगता है सुनने में, पर बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, फलसफी मानते थे कि चीजों में अपनी एक तासीर होती है, एक कुदरती ताकत होती है, जैसे आग में जलाने की कुदरत है।
हाँ, ये तो आम बात है।
गजाली ने कहा, नहीं, आग खुद नहीं जलाती। जब आग रुई के पास आती है तो उस लम्हे, उस अवसर पर, ओकेजन, अल्लाह अपनी मर्जी से रुई में जलने का असर पैदा करता है।
रुकिए, मतलब आग सिर्फ एक जरिया है, एक पर्दा है, जलाने वाला हर बार अल्लाह है।
उनके मुताबिक हाँ, आग या कोई भी चीज वो सिर्फ एक अवसर या निशानी है। असल में हर काम, हर पल सीधे अल्लाह के हुक्म और उसकी मर्जी से हो रहा है। कोई भी चीज अल्लाह से आजाद होकर अपने आप कुछ नहीं कर सकती।
अच्छा, इससे वो क्या साबित करना चाहते थे?
इससे वो अल्लाह की कुदरत कामिला, उसकी एब्सोल्यूट पावर और हर लम्हे दुनिया में उसके दखल को साबित करना चाहते थे कि हर चीज पूरी तरह उसी पर निर्भर है। इसने ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, ओमनीपोटेंस के विचार को बहुत मजबूत किया।
समझ गई। ये बात तो यकीनन उस वक्त के दार्शनिकों के लिए चौंकाने वाली रही होगी।
बिल्कुल।
तो गजाली ने सूफी रास्ते को आम किया, तर्क की हदें बताईं और अल्लाह की सीधी ताकत पर जोर दिया। अगर उनकी तुलना करें किसी और से, जैसे इब्ने सीना से, तो फर्क साफ है। लेकिन इब्ने रुश्द एक और बड़ा नाम, उन्होंने तो गजाली को जवाब भी दिया था शायद।
जी हाँ, स्पेन के अंदालूसिया के महान फलसफी थे इब्ने रुश्द, जिन्हें पश्चिम में एवेरोस कहते हैं। उन्होंने गजाली की तहाफुत के जवाब में किताब लिखी, तहाफुत तहाफुत, यानी असंगति की असंगति।
अच्छा, असंगति की असंगति।
हाँ, उसमें उन्होंने फलसफे का जोरदार बचाव किया और इल्जाम लगाया कि गजाली ने अरस्तु और इब्न सीना को ठीक से समझाई नहीं है, उन्हें गलत पेश किया है।
तो ये एक बड़ी बहस छिड़ गई।
हाँ, ये गजाली बनाम इब्न रुश्द की बहस इस्लामी फिक्र के इतिहास का एक बहुत ही अहम मोड़ है। इसने सदियों तक इस्लामी दुनिया में सोच की दिशा को प्रभावित किया।
और गजाली की अपनी विरासत, उन्हें इस्लाम का प्रमाण कहा गया, उनका असर कितना गहरा और टिकाऊ रहा?
बहुत गहरा और बहुत टिकाऊ। सुन्नी इस्लाम में तो वो सबसे ज्यादा इज्जत पाने वाली शख्सियतों में से एक बन गए। उनके काम मदरसों के निसाब यानी पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गए।
अच्छा।
उन्होंने अगली कई सदियों के लिए इस्लामी सोच, तालीम और रूहानियत की दिशा तय कर दी। बाद के बड़े बड़े विद्वान जैसे इब्ने तैमिया, शाह वलीउल्लाह देहलवी, सब उनसे किसी न किसी तरह मुतासिर हुए।
और सूफीवाद को जो उन्होंने मुख्य धारा में जगह दिलाई, उसका क्या नतीजा हुआ?
उसका नतीजा ये हुआ कि इस्लाम में जो एक सिर्फ कानून और रस्मों पर जोर देने वाला सूखापन आ सकता था, उसके मुकाबले में रूहानियत और बातिनी गहराई को एक मजबूत जगह मिली। सूफी तरीके ज्यादा फैले और उन्हें ज्यादा कबूलियत मिली।
और क्या उनका असर सिर्फ इस्लामी दुनिया तक ही रहा?
नहीं, ऐसा नहीं है। जब मध्य युग में यूरोप में उनके कामों का लैटिन में तर्जुमा हुआ, तो वहां के ईसाई विचारक जैसे थॉमस एक्विनास, वो भी उनसे प्रभावित हुए। यहूदी विचारक थे माइमोनाइड्स, उन्होंने भी गजाली के तर्कों से काफी कुछ लिया और उन पर बहस की।
तो उनका असर मतलब काफी दूर तक फैला।
जी हाँ।
और आज के जमाने में क्या अल गजाली आज भी प्रासंगिक हैं? क्या आज भी उनके विचारों का कोई महत्व है?
मेरे ख्याल में तो बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए, आज भी मुस्लिम दुनिया में जो सुधार और परंपरा को लेकर बहसें चलती हैं,
हाँ बिल्कुल,
उनमें दोनों ही तरफ के लोग अक्सर गजाली का हवाला देते हैं। उनका जो तरीका था तर्क और रूहानियत को जोड़ने का, वो आज भी जो विज्ञान और मजहब के बीच बहस होती है उसमें रोशनी डाल सकता है।
और क्या बातें हैं जो आज भी हमें छूती हैं?
उनकी जो इंसान की नफ्स यानी मानस, उसके जज्बात, उसकी रूहानी तरक्की को लेकर जो गहली बातें हैं, वो आज की साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प की बातों से भी कहीं ना कहीं मिलती जुलती हैं। परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, इस सवाल से जूझ रहे समाजों के लिए उनका नजरिया आज भी राह दिखा सकता है।
उनके कुछ मशहूर कॉल यानी कथन भी हैं जो अक्सर दोहराए जाते हैं, जैसे शक यकीन की तरफ पहला कदम है। ये तो जैसे उनकी अपनी जिंदगी का निचोड़ लगता है।
बिल्कुल, शक अपने आप में मंजिल नहीं है, बल्कि वो सफाई का एक रास्ता है ताकि दिल मजबूत और सच्चे यकीन के लिए तैयार हो सके।
एक और मशहूर बात है उनकी, बिना अमल के इल्म बेकार है और बिना इल्म के अमल पागलपन है।
हाँ, ये एहया में है, मतलब साफ है, ज्ञान और कर्म साथ साथ चलने चाहिए। सिर्फ जानना काफी नहीं है, उस जानने को जीने का ढंग बदलना चाहिए, वरना वो जानना बेकार है, और बिना समझे कुछ करना वो तो बस दीवानगी है।
एक और बड़ी शक्तिशाली मिसाल देते हैं वो, अकल खुदा को बस उतना ही समझ सकती है जितना तराजू पहाड़ों को तौल सकता है।
क्या बात है, ये दिखाता है कि दिमाग की, इंसानी अकल की अपनी सीमाएं हैं, खासकर जब मामला खुदा की जात और उसके भेदों को समझने का हो। वहां सिर्फ अकल काफी नहीं, वहां दिल की नजर, रूहानी कश्फ यानी अंतर्दृष्टि की जरूरत पड़ती है।
और एक याद दिलानी भी है उनकी, लज्जतों को तबाह करने वाली चीज यानी मौत को अक्सर याद रखो।
जी, ये दुनिया की क्षणभंगुरता, उसकी अस्थाई हकीकत और आखिरत की तैयारी पर उनका जोर दिखाता है कि असली हकीकत को मत भूलो।
कुछ ऐसी बातें भी हैं उनके बारे में जो कम लोग जानते हैं, कुछ दिलचस्प किस्से। सुनाए, उनके नाम अल-गज़ाली पर भी थोड़ी बहस है कि ये कहां से आया।
हाँ, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये गजाल लफ्ज से है जिसका मतलब है ऊन काटने वाला, शायद उनके पिता का ये पेशा रहा हो। कुछ कहते हैं नहीं, ये उनके गांव गजाले के नाम से है, पक्का कुछ कहना मुश्किल है।
अच्छा,
और वो जो उनका रूहानी संकट था वो इतना गहरा था कि वाकई उनकी आवाज चली गई थी। ये कोई मामूली दिमागी परेशानी नहीं थी, ये एक वजूद का संकट था जिसने उन्हें जिस्मानी तौर पर भी लाचार कर दिया था।
और वो किस्सा भी बड़ा मशहूर है कि दमिश्क में अपनी गुमनामी के दिनों में उन्होंने उमैयद मस्जिद की मीनार साफ करने का काम किया था।
हाँ, सोचिए, बगदाद निजामिया का वो अजीम प्रोफेसर, इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा आलिम, गुमनामी में एक मस्जिद की मीनारें साफ कर रहा है। ये अपनी अना यानी अहंकार को मिटाने की विनम्रता की क्या मिसाल है।
सच में,
कहते हैं बाद में अब्बासी खलीफा ने उन्हें वापस बगदाद बुलाने की बहुत कोशिशें की, बड़े बड़े ओहदे और दौलत का लालच दिया, पर गजाली ने मना कर दिया। वो तूस में अपने छोटे से मदरसे और खानका में पढ़ाने और रूहानी मार्गदर्शन करने की सादा जिंदगी में ही ज्यादा खुश और मुतमईन थे।
और इतनी उथल पुथल भरी जिंदगी, 11 साल की यात्रा, इसके बावजूद 70 से ज्यादा किताबें लिख डाली, ये कैसे मुमकिन हुआ?
ये उनकी जबरदस्त बौद्धिक क्षमता और मेहनत को दिखाता है। फलसफा, कलाम, फिक्र, अखलाक, तसव्वुफ, शायद ही कोई अहम दीनी या बौद्धिक मौजू हो जिस पर उन्होंने न लिखा हो। वो अपनी यात्रा के दौरान भी यकीनन सोचते, लिखते और सीखते रहे होंगे।
जाहिर है, इतने बड़े और प्रभावशाली विचारक की आलोचना भी हुई होगी, खासकर फलसफे को लेकर जो उन्होंने लिखा।
हाँ, आलोचना तो हुई और होती रही है। उन पर सबसे बड़ा इल्जाम यही लगता है, खासकर बाद के दौर में, और इब्न रुश्द ने भी ये बात उठाई कि उन्होंने फलसफे और आज़ाद ख्याल तहकीक यानी वैज्ञानिक सोच का रास्ता एक तरह से बंद कर दिया, जिसे इज्तिहाद के दरवाजे बंद करना भी कहा जाता है।
और उनकी वो कारणता वाली बात।
हाँ, खासकर उनकी कारणता वाली बात को लेकर कहा गया कि अगर हर चीज सीधे खुदा कर रहा है तो फिर दुनिया के कुदरती कानून, नेचुरल लॉज को जानने और साइंस की बुनियाद का क्या मतलब रह जाता है।
लेकिन क्या ये इल्ज़ाम पूरी तरह सही माना जाता है आज?
आज के दौर के ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये शायद थोड़ा सरलीकरण है। ऐसा नहीं है कि गजाली के बाद फलसफी या वैज्ञानिक काम बिल्कुल बंद हो गया, वो होता रहा, लेकिन ये बात काफी हद तक सही है कि गजाली के जबरदस्त असर की वजह से सुन्नी इस्लाम में जो बौद्धिक रुझान था, उसका केंद्र यूनानी फलसफे से हटकर कलाम और तसव्वुफ की तरफ ज्यादा झुक गया।
और क्या आलोचना हुई?
उन्हें कुछ बहुत सख्त किस्म के कानूनदानों यानी फुकाहा से भी मुखालफत झेलनी पड़ी, जिन्हें सूफी तरीके बिदत यानी नई ईजाद लगते थे। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे सूफी भी थे जिन्हें लगा कि गजाली ने रूहानियत को बहुत ज्यादा कायदे कानून और अकली दायरे में बांधने की कोशिश की है।
तो मतलब उन्हें दोनों तरफ से आलोचना मिली।
जी हाँ।
तो आज भी शायद ये बहस चलती है कि उनका असर कुल मिलाकर इस्लामी तहजीब के लिए कैसा रहा, क्या उन्होंने उसे ठहराव दिया या उसे एक जरूरी संतुलन और गहराई बख्शी।
हाँ, ये बहस तो जारी है और शायद जारी रहेगी। उनके काम इतने गहरे, इतने बहुआयामी हैं कि अलग अलग सोच के लोग उनमें से अपनी अपनी जरूरत और समझ के मुताबिक मतलब निकालते रहे हैं।
लेकिन एक बात तो तय है,
हाँ, एक बात बिल्कुल तय है कि अल गजाली इस्लामी फिक्र और तहजीब के इतिहास में एक ऐसे मील के पत्थर हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें आप नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। उनका असर हर तरफ महसूस किया जा सकता है।
तो अल गजाली की कहानी एक तरह से देखें तो एक जबरदस्त बौद्धिक और रूहानी सफर की कहानी है। शक से यकीन तक का सफर, शोहरत की बुलंदियों से गुमनामी के गहराइयों तक, और फिर वहां से एक नए तरह के इल्म और हिकमत की मंजिल तक।
बिल्कुल, एक ऐसा सफर जिसने ना सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी बदली बल्कि आने वाली सदियों के लिए इस्लामी सोच का नक्शा भी बदल दिया। उन्होंने यूनानी दर्शन को उसकी हद बताई, इस्लामी कानून और रूहानियत के बीच पुल बनाया, और ज्ञान के मायने को सिर्फ दिमाग से हटाकर दिल और अनुभव तक फैलाया।
हाँ, और उनकी जिंदगी और उनके काम आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
जरूर करते हैं। ज्ञान क्या है असल में? सच्चा यकीन कैसे हासिल होता है? अक्ल और दिल का रिश्ता क्या है? दुनिया और दीन में, जाहिर और बातिन में, यानी बाहरी और भीतरी जीवन में संतुलन कैसे साधा जाए? ये सवाल तो हमेशा ताजा रहेंगे।
ओ, जाके जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अल गजाली की तरह हम सब भी अपनी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी शक और यकीन के पलों से गुजरते हैं। आज की इस तेज रफ्तार, जानकारी से लबालब भरी दुनिया में हम अपनी जिंदगी में अक्ल यानी तर्क, ईमान यानी आस्था, और अपने जाती तजुर्बे यानी व्यक्तिगत अनुभव के बीच वो संतुलन कैसे खोज सकते हैं जिसकी तलाश अल गजाली को थी। शायद ये सवाल हमें उनकी विरासत के सबसे करीब ले जाता है।
क्लोजिंग नरेशन, स्टैंडर्ड हिंदी।
क्लोजिंग नरेशन, स्टैंडर्ड हिंदी।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।